अध्याय छांव में धूप जैसा। शोरूम की चमकती फ्लोरिंग पर स्टिलेटो हील की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रहना का दिल अब ज्यादा तेज धड़क रहा था। अखिल चला तो गया था, लेकिन क्या सच में? रहना ने गहरी सांस ली, टेबल पर जैकेट रखते हुए खुद को संयत करने की कोशिश की। वो धीरे धीरे अपनी जगह की ओर लौटने लगी, पर तभी पीछे से वही आवाज आई, रहना। उसके कदम एक पल को थम गए। अखिल वापस आ चुका था। इस बार उसकी चाल पहले से धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें और ज्यादा तेज, जैसे किसी शिकारी की जो अपने शिकार की धड़कनें भी सुन सकता हो। मुझे जवाब तो दे दिया, वो बोला, अब क्या इतना भी हक नहीं कि कुछ पल बात कर सकूं? रैना ने पीछे मुड़कर देखा। वहां ग्राहक नहीं थे और सुपरवाइजर किसी दूसरे सेक्शन में व्यस्त थी। उसने संयम के साथ कहा, सर, अगर आपको कुछ और देखना है तो मैं मदद कर सकती हूं। लेकिन? लेकिन क्या? अखिल ने धीरे से एक कदम और आगे बढ़ाया। कभी सोचा है कि अगर मैं तुम्हारा ग्राहक नहीं, तुम्हारा अतीत हूं, तो मुझे कैसे निपटाओगी? रहना एकदम सीधी खड़ी हो गई। अतीत को कोई निपटाता नहीं, बस सीने में दफना देता है, और आपने तो इस दफन के लिए खुद मेरी कब्र खो दी थी। अखिल का चेहरा बल भर के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर उसने एक छोटी मुस्कान ओढ़ ली। तो आज भी तुम्हारी बातें वही हैं, तल्ख, पर अब तुम्हारी आवाज में कांप नहीं है। अब डरती नहीं हूं, रैना बोली। और क्या अब भी चाहती नहीं हो? अखिल ने पूछा, बहुत नजदीक आकर। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जंग सी खरोच थी। चाहत और जहर में फर्क होता है अखिल, और तुम्हारे प्यार ने मुझे बस जहर दिया। अखिल का चेहरा झुका, उसने रैना की ओर एक कदम और बढ़ाया। अब दोनों के बीच महज कुछ इंच की दूरी थी, फिर भी तुम हटी नहीं, वो फुसफुसाया। तुमने मेरा सामना किया, तुम्हारी आंखें अब भी मुझसे भागती नहीं हैं। रैना ने आंखें नीची नहीं की, लेकिन उसकी उंगलियां कसमसाईं, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे शब्दों से डर नहीं लगता, न तुम्हारे करीब आने से। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं अब भी वो लड़की हूं जो तुम्हारे छूने से कांप जाती थी, तो तुम गलत हो। अखिल के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अच्छा, उसने बहुत धीमे से कहा, और रैना की उंगलियों को हल्के से छू लिया, जानबूझकर। रैना ने झटके से हाथ पीछे खींचा, लेकिन अखिल ने उसका रास्ता रोक लिया। अब तो छूने से डर भी नहीं लगता ना, वो बेहद धीमे स्वर में बोला। तो एक बार फिर से देख लो, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? रैना ने खुद को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे रैक थी, और सामने अखिल की नजदीकी बढ़ती जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है अखिल? वो बोली, अब गुस्से से कांपती हुई, कि अगर तुम थोड़ा करीब आओगी तो मैं फिर से पिघल जाऊंगी? पिघलना तो तुमने सीखा ही था मेरे साथ। अखिल की आवाज धीमी थी, पर आंखों में वो वही पुराना शिकारीपन था। हां, रैना की आंखों में आंसू की एक परत चमक उठी, लेकिन अब जलना सीख लिया है। अब अगर तुम हाथ लगाओगे तो मैं राख कर दूंगी, खुद को भी और तुम्हें भी। अखिल कुछ पल के लिए ठिठक गया, उसके चेहरे पर वही कश्मकश, चाहत और नफरत का अजीब मिला जुला रंग। फिर उसने धीरे से रैना के चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर कहा, जानती हो रैना, नफरत भी तभी की जाती है जब मोहब्बत कभी बहुत गहरी रही हो। तो क्या अब ये तुम्हारा प्यार है? रैना ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, या सिर्फ वो चीज है जो तुम्हें खो देने की आदत नहीं? तुम मेरी हो, थी, और, अखिल की आवाज एक पल को टूट गई, रहोगी? नहीं, रैना ने अपनी ठोड़ी ऊपर की, मैं अब सिर्फ अपनी हूं। अखिल अब कुछ नहीं बोला, वो बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहने के लिए शब्द तलाश रहा हो, पर उन्हें खुद ही निगल गया। फिर उसने अपना रुख बदला, जैसे वो हार मानने को तैयार नहीं, पर आज बहस छोड़ रहा हो। जैकेट अब भी टेबल पर रखी थी, उसने एक आखिरी नजर उस पर डाली और फिर बिना कुछ कहे शोरूम से बाहर निकल गया। रैना वहीं खड़ी रही, एक टूटी सांस लिए, जैसे कोई युद्ध अभी अभी टला हो। शोरूम की सफेदी अब उसकी आंखों को चुभने लगी थी। वो धीरे से वॉशरूम की ओर बढ़ी और शीशे में खुद को देखा। चेहरा शांत था, पर आंखें नम। ये नफरत में मिला प्यार सबसे खतरनाक होता है, उसने अपने मन में कहा, जो ना पास आता है ना दूर जाता है। वो जानती थी ये अभी खत्म नहीं हुआ था, और अखिल भी जानता था ये एक अंत नहीं, एक शुरुआत थी।